श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 18। वारणिंद्रम पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमंगले शंख तुर्य निनादेना ब्रह्मघोषेण च आदृतः प्रणयागत साध्वसः। वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमंगले शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृतः प्रत्युज्जग्मुरथे हृष्टा प्रणयागत साध्वसः। वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमंगले शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मुरथे दृष्टाः प्रणयागत साध्वसः। वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमंगले शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मुरथे दृष्टाः प्रणयागत साध्वसः। मांगलिक कार्य वाले हाथी को पुरस्कृत्य सामने करके ब्राह्मणे हैं ब्राह्मणों द्वारा ससुमंगले है समस्त शुभ लक्षणों सहित शंख शंख तुर्य तुरही निनादेना ध्वनि से ब्रह्म घोषेण वेदों के स्तोत्रों के उच्चारण से च तथा आदृतः महिमा मंडित प्रणयागत। इसमें दो शब्द लिखे नहीं हैं अनुवाद, यहाँ पे शायद इंग्लिश में होगा, किसी के पास है इंग्लिश? ठीक है, इसके दो शब्द हैं जो छूट गए हैं, जिसका यहाँ पर शब्दार्थ नहीं दिया है, वो हैं प्रत्यय हर एक जब मुँह फूल लेकर रथय रथों पर दृष्टा देख कर प्रणयागत स्नेह से सिक्त साध्वसा साद। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। वे फूल लिए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य सूचक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तात्पर्य, किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है, जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है, जिसमें शंख पुष्प धूप सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से स्तोत्रों का पाठ करने योग्य ब्राह्मण सम्मिलित हैं। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरव श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाउं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान का स्वागत का वर्णन बहुत विस्तार से हो रहा है। पिछले कुछ श्लोकों में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे भगवान का स्वागत किया, कौन कौन आए। पिछले श्लोक में वर्णन था अलग अलग लोगों का, चाहे वो वसुदेव हों, अक्रूर जी हों इत्यादि, वो सब भाग कर आ रहे हैं भगवान की ओर। फिर भगवान के कई पुत्र इत्यादि, ये सब द्वारिका में भगवान का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर वर्णन है कि भगवान का स्वागत कैसे कर रहे हैं वे लोग, शंख की ध्वनि से, फूलों से, गंध से और वैदिक मंत्रों के उच्चारण से, हाथी से, ऐसे भगवान का स्वागत किया जा रहा है। और प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं अतिथि के स्वागत के लिए, किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि यही है। तो कैसे किसी का स्वागत, कैसे अतिथि का स्वागत करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ कि जो ऐसा स्वागत होना चाहिए जो आदर से परिपूर्ण हो, अर्थात एक ऐसा आदर का वातावरण होना चाहिए कि जो भी आपके घर में अतिथि आए, आपके मंदिर में अतिथि आए, तो वो स्नेह को प्राप्त करे। जैसे यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं कि स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। अर्थात जब हम किसी का स्वागत करें तो हमें कैसे करना चाहिए, वो यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं। आगंतुक या कोई मेहमान, जो हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, घर में कोई अतिथि आ जाए तो कैसे उनका स्वागत होना चाहिए। विशेष करके गृहस्थ जीवन में ये अनिवार्य है। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर घर में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसका भी इतना अच्छा स्वागत होना चाहिए कि वो अपनी सारी शत्रुता को भूल जाए। ये एक श्लोक है जिसको उन्होंने शास्त्रों से लिखकर बताया, शत्रुमपि एव, कि अगर शत्रु भी अगर आ जाता है तो शास्त्र कहता है कि उसका इतना अच्छा स्वागत कीजिए कि वो अपनी शत्रुता भूल जाए। वैसे साधारण होता नहीं, हमारा कोई प्रियजन आता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, आदर से स्वागत करते हैं, लेकिन अगर कोई शत्रु आ जाए तब सोचते क्यों आ गया, ये नहीं आया होता तो अच्छा है, अब कितनी देर बैठेगा पता नहीं, ये जा क्यों नहीं रहा इत्यादि। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं या शास्त्र कहते हैं कि इतने आदर से उसका ऐसा स्वागत इतने हृदय से करना चाहिए कि वो अपनी सारी शत्रुता भूल जाए, वो भूल जाए कि ये व्यक्ति से मुझे शत्रुता है, इतना अच्छा उसका स्वागत करना चाहिए। तो ये अनिवार्य है, जहाँ स्वागत नहीं होता वहाँ पर उपद्रव होता है। इसका एक उदाहरण भागवत में आता है सती देवी का। सती देवी जब अपने घर में गईं दक्ष के यज्ञ में, तो दक्ष ने तो स्वागत किया नहीं, क्योंकि दक्ष को क्रोध था शिवजी के ऊपर, द्वेष था शिवजी से, और सती उनकी पत्नी थी, हालांकि पुत्री थी दक्ष की, लेकिन स्वागत नहीं किया। और केवल दक्ष ने नहीं, किसी ने स्वागत नहीं किया, क्योंकि सब दक्ष से भयभीत थे। तो जब सती आई, सती के साथ शिवजी के गण आए, किसी का स्वागत नहीं हुआ, केवल सती की बहनों ने और सती की माता ने प्रेम से बात की बस, बाकी सब ने देखा भी नहीं सती की तरफ, पिता ने नहीं देखा। और देखिए, क्योंकि उनका आदर सत्कार नहीं हुआ और इसीलिए इतना बड़ा उपद्रव हुआ। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भी कोई घर में आए तो यथाशक्ति हमें उसका स्वागत करना चाहिए। यथाशक्ति मतलब जो शक्ति है उसमें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत धन है, बहुत व्यवस्था है, तो ऐश्वर्य से करना चाहिए, तब उसको पानी पिलाकर नहीं भेजना चाहिए। लेकिन अगर प्रभुपाद लिखते हैं कि आपके पास ऐश्वर्य नहीं है तो कोई घर में आए तो कम से कम उसको कुशा पर बैठने का स्थान दीजिए। अगर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे गद्दे नहीं हैं, कोई बात नहीं, कुशा तो मिलती है, कुशा पर बैठने का स्थान दीजिए और उसको जल दीजिए। अगर कुछ खाने के लिए है तो दीजिए, नहीं तो कम से कम जल दीजिए, मीठी बातें कीजिए। ये तो कोई भी कर सकता है। इतना ही नहीं, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते, मान लीजिए आपके घर में कुशा की स्थान भी नहीं है, कुशा का आसन नहीं है, कम से कम उसको जमीन पर बिठाने से पहले उसको साफ कीजिए, उस जगह को, कि उसको साफ करके फिर बिठाइए। ये आदर, जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं ना कि महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि आदर। तो कोई आ जाता है, कम से कम जगह को साफ कीजिए, वहां बिठाइए, एक गिलास जल दे दीजिए। आपके घर में जल भी नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो हम लोग भारत में हैं, पाश्चात्य जगत में भी नहीं होता ऐसा, लेकिन मान लीजिए प्रभुपाद कहते हैं जल भी नहीं है आपके घर में, कम से कम हाथ जोड़कर उसको कहिए कि आपका स्वागत है, बस इतना कर दीजिए। इतना तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए तो आपको कोई धन की आवश्यकता नहीं, आपको कोई और सुविधाओं की आवश्यकता नहीं, और प्रभुपाद कहते हैं अगर इतना भी नहीं कर सकते सोचिए कहाँ कहाँ से हो रहा है। पहले अगर है धन ऐश्वर्य है अच्छे से स्वागत कीजिए, अच्छा उसको खिलाइए, अतिथि को खिलाना चाहिए। नहीं तो दो चीजों को अगर नहीं खिलाएं तो वो चले जाते हैं, एक अतिथि और दूसरा बीमारी बुखार। अगर किसी को बुखार हो वो उपवास करे तो बुखार चला जाता है, और अगर अतिथि घर में आए आप उसको कुछ नहीं खिलाएं तो अतिथि चला जाता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। तो इसीलिए अगर आपके पास सुविधा है अच्छी तरह खिलाएं उसको, नहीं खिला सकते कम से कम बिठाएं कुशा के आसन पर, जल दें, वो भी नहीं कर सकते कुशा नहीं है तो जल दीजिए, जल भी नहीं दे सकते तो कम से कम हाथ जोड़कर स्वागत कीजिए। और प्रभुपाद कहते इतना भी नहीं अगर कोई कर सकता, हाथ जोड़कर अगर अच्छे बोल भी नहीं बोल सकता तो मन में पश्चाताप करके आंसू बहाने चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति का स्वागत नहीं किया। अर्थात ये है कि हमें यथाशक्ति स्वागत करना चाहिए व्यक्ति का, जितनी हमारी क्षमता जो भी आए उसका स्वागत होना चाहिए। शास्त्रों में इससे कई वर्णन है कि जहां पर लोगों ने अतिथियों का स्वागत किए, जैसे रंती देव की कथा आप सब ने सुनी होगी। रंती देव राजा थे, लेकिन एक राजा होते हुए भिक्षुक की तरह रहते थे, वैरागी थे, पूर्ण वैरागी, और केवल वो नहीं उनका परिवार पूरा। राजा थे लेकिन जब तक कोई खाने को नहीं देता था खाते नहीं थे। आप सोचिए ऐसे राजा हो सकते हैं? आजकल के हमारे राजा तो ऐसे हो ही नहीं सकते। जब तक कोई खाने नहीं देता था रंती देव नहीं खाते थे, उपवास करते थे। एक दिन 48 दिनों तक उपवास किया उन्होंने, किसी ने दिया नहीं लाने खाने। 48 दिनों बाद भोजन आया उनके पास। आप सोचिए 48 दिन भूखे रहना। हम लोगों के लिए तो अब जन्माष्टमी आ रही है, और जन्माष्टमी पर एक दिन, वो भी रात को 12 बजे तक, पूरा दिन नहीं उपवास करना होता है, तो हम लोग शाम से समय देखने लगते, शाम से नहीं कई दिन पहले से हमारी चिंता शुरू हो जाती है, हमसे नहीं होगा, क्या होगा, अगर सर दर्द हो गया तो क्या होगा, बीमार हो गया तो क्या होगा, नहीं नहीं 12 बजे तक पानी पी लूँगा, ये करूँगा इत्यादि। और दोपहर के 12 बजते ही कई लोग सोचने लगते हैं भक्त ठीक है अब हो गया, भगवान ने थोड़ी कहा है कि अपनी हेल्थ खराब करके भक्ति करो इत्यादि इत्यादि, ये हम लोग कारण, मन कारण देने लगता। तो हमारे लिए तो एक दिन भी बहुत, क्या कहते हैं कि वो एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के समान है, है ना। लेकिन रंतिदेव 48 दिन तक राजा होते हुए, और 48 दिन के बाद भोजन आया, उन्होंने उसको विभाजित किया, अपने लिए रखा, अपने परिवार के लिए रखा। लेकिन अचानक उस समय एक ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण ने कहा मैं भूखा। आप सोचिए कुछ दिनों बाद आपको भोजन मिल रहा है, 48 दिन तो बहुत की बात है, दो तीन दिन बाद, अब दो तीन दिन भूखे हैं, कहीं कुछ मिला नहीं, आप किसी ने ला के दिया, बाप खाने जा रहे हैं और कोई अतिथि आ जाता है, आप दरवाजा बंद करके खाओगे कोई अंदर नहीं आना चाहिए जल्दी जल्दी, और कोई आके मांगेगी भी तो बोले बाद में आना अभी। रंती देव ने जो खा रहे थे उसका आधा हिस्सा दे दिया ब्राह्मण, ठीक है आप खा लीजिए, आधा रह गया। अब खाने जा रहे थे तो और एक चंडाल आ गया, वहां पर शूद्र आ गए, बहुत भूख लगी है, ठीक है वो भी दे दिया। पानी बचा, पानी पीने जा रहे थे, एक व्यक्ति आया अपने कुत्तों को लेकर कि मेरे कुत्ते बड़े प्यासे हैं पानी नहीं, प्रतिदेव वो भी दे दिया। तो ये एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि अगर अतिथि घर में आए तो व्यक्ति को अगर खुद भूखा रहना पड़े कोई चिंता नहीं, पहले उसको दूसरों को खिलाना चाहिए। वैदिक सभ्यता का नियम ये है कि जो घर के बड़े हों वो अंत में प्रसाद लें या भोजन ग्रहण करें, पहले नहीं, ये उल्टी प्रथा आजकल शुरू है। यस, वैदिक प्रथा ये है कि जो घर के बड़े हैं वो अंत में प्रसाद लें, सबको खिलाकर देखें कि सबने घर में खा लिया, फिर जब उनके लिए बचा हो तो बाहर जाकर सड़क पर चिल्लाएं कि अभी तक मैंने प्रसाद नहीं दिया है, कोई खाना खाने में बाकी है तो आए, अगर कोई नहीं आए तो जाकर ग्रहण करे, अगर कोई आए तो अपना भोजन उसे दे दे और खुद भूखे रहे। ये वैदिक सभ्यता है। अजीब लग रहा है ना सुनने में, हम लोग सोचे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कहाँ की बात है, ऐसा कौन कर सकता। हर कोई करता था। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी करते थे, वो तो कोई बहुत बड़े वैरागी सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ भक्त थे। भोजन करने के पहले बाहर जाकर पुकारा करते थे, कोई है किसी को भोजन चाहिए आइए, नहीं हो तो पकड़ पकड़ कर ला देते। प्रभुपाद लिखते हैं, आप पढ़िए प्रभुपाद लीलामृत, तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि पकड़ पकड़ कर लेकर आते थे साधुओं को, लेकर उनको खिलाते थे भोजन और कहते थे मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, राधा रानी की सेवा कर सके बस। और देखिए आगे चल के प्रभुपाद ने राधा रानी की सेवा की और कितनी बड़ी सेवा की। तो ये वैदिक सभ्यता है, ये कोई ये आज से 50-60 साल पहले तक थी, हर घर में थी। ये तो अब आधुनिकता बढ़ गई है, हम लोग मॉडर्न हो गए, हम लोग प्रगति कर गए। तो हमारी क्या प्रगति हो गई है, जो अच्छी चीजें थी उनको हमने छोड़ दिया, उनको छोड़ दिए, बेकार है सब चीज। ये शास्त्र में लिखा है कि हमें बहुत सारे लोगों का आदर करना चाहिए, जैसे गुरु, अतिथि, वृद्धानाम। ये शास्त्र कहता है कि इन सब का आदर होना चाहिए, लेकिन आजकल हम लोग इन सब के आदर को भूल गए हैं। ये भागवत में वर्णन है, गुरु, अग्नि, अतिथि, वृद्धानाम, इन सब का आदर करना चाहिए। गुरु का आदर होना चाहिए क्योंकि वो ज्ञान प्रदान करते हैं, अग्नि का आदर होना चाहिए क्योंकि उससे यज्ञ होता है, अतिथि का आदर होना चाहिए क्योंकि इससे आदर का एक सम्मान का वातावरण बनता है। और हमारे हृदय से जो लोभ की भावना है, संग्रह करने की भावना है, वो चली जाती है। स्वार्थ की भावना चली जाती है अतिथि का अच्छी तरह से स्वागत करने से। जो व्यक्ति अतिथि का स्वागत नहीं करता मतलब स्वार्थी है, भोजन है दे नहीं रहा मतलब स्वार्थी है, मैं पहले खा लूं, ये स्वार्थ है। तो रंति देव ने ऐसे स्वागत किया। और भी स्थानों में वर्णन है कि कैसे अलग अलग स्थान में स्वयं कृष्ण ने कैसे स्वागत किया अतिथियों का, इसका वर्णन भागवत में। जब कृष्ण वृंदावन में थे तो अक्रूर जी आए कृष्ण को लेने के लिए, और अगर आप वहां उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो कृष्ण ने अक्रूर जी का किस तरह स्वागत किया इसको देख, तब तो वो राजा भी नहीं थे। आगे चलकर द्वारका में उन्होंने बहुत से लोगों का स्वागत किया, लेकिन वृंदावन में तो वो कोई राजा नहीं थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने अक्रूर जी का बड़े मान सम्मान के साथ उनको लेकर आए, आदर से उनको बिठाया, उनके चरण धोए, उनको कुछ खाने के लिए दिया, बड़े हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहे और उनसे पूछा आप कैसे हैं, कि पद्धति दिखाई श्री कृष्ण ने। इतना ही नहीं, जब वो द्वारका में राजा हो गए उस समय भी जब नारद मुनि आया करते उनसे मिलने तो स्वयं आसन से खड़े हो जाते थे, जबकि वो भगवान है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, और नारद भी ये जानते कि ये भगवान है, इनको कोई आवश्यकता नहीं मेरा स्वागत करने की, लेकिन वो खड़े होते थे। इतना ही नहीं, जाके नारद जी के चरण छूते थे, उनके चरण धोते थे। ये श्री कृष्ण ने दिखलाया कि ये पद्धति है ब्राह्मणों की, भक्तों के स्वागत की। सुदामा आए, श्री कृष्ण ने कैसे स्वागत किया उनका हम सब जानते हैं। श्री कृष्ण ने उनको बिठाया, अपने बिस्तर पर बिठाया, स्वयं उनके चरण धोए, उस जल को छिड़का सबके ऊपर, ये स्वागत की विधि। सुदामा कौन थे कृष्ण के सामने? कृष्ण इतने बड़े राजा, द्वारपालों ने जब देखा सुदामा को कि ये आए हैं तो रोक दिया, ये कहाँ जाना चाहते, सब फटे हुए कपड़े, भिखारी। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं तो अपना महल छोड़कर भाग कर आए स्वागत करने के, सारे लोग हैरान हो गए कौन है व्यक्ति जिसके लिए कृष्ण भाग कर आ रहे हैं। तो ये स्वागत की विधि है। रुक्मिणी ने जब ब्राह्मण को भेजा कृष्ण के पास, कृष्ण के पास ब्राह्मण आए, स्वागत किया उनका, बड़ी अच्छी तरह से उनको बैठने का स्थान दिया, उनको जल इत्यादि दिया, अर्घ्य इत्यादि उनको खाने के लिए दिया, उनसे बड़ी मीठी मीठी बातें की, कैसे हैं आप, आपका सब वहाँ पर ठीक तो चल रहा है, आपके ब्राह्मण का धर्म ठीक चल रहा है, ये विधि है। तो कृष्ण ने स्वयं दिखलाया कि कैसे हमें अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आते हैं, अतिथि, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे तुम अपॉइंटमेंट लेके क्यों नहीं आए, बाहर चले जाओ। अतिथि वैदिक सब बाहर की सभ्यता नहीं है, पाश्चात्य जगत में जाएंगे तो कोई आपको घर में घुसने नहीं देगा बिना अपॉइंटमेंट के। वो समय देते हैं ठीक है, आपको खाने के लिए आना है 9 बजे, डिनर पे आना चाहिए। अगर आप लेट हो गए तो बोलेंगे सॉरी लेट हो गए, कल आइएगा, बाद में आइए, तो टाइम लेके जाना पड़ता है। लेकिन वैदिक सभ्यता में अतिथि, कोई तिथि नहीं, जो भी आए वो हमारे, हमें उसको स्वागत करना है, उसको जल देना है, कुछ भोजन देना है, विशेष करके मंदिर में। ये भगवान का घर है, कृष्ण ने दिखलाया है। द्वारका में जब वो रहते थे तो कैसे उन्होंने स्वागत किया, हमें ऐसे स्वागत करना चाहिए हर अतिथि का, कि वो जो मंदिर में आए तो उसका इतना अच्छा स्वागत हो, कोई मीठी बात बोले, थोड़ा प्रसाद दे, उनको बैठने का स्थान दे, अगली बार आने का उत्साह हो। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कभी कोई आ गया, अभी हम लोग बैठे जब कर रहे हैं, कौन आ गया, क्यों आया है, थोड़ा समय बाद, अभी मंदिर खुला नहीं है, बाद में आना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह लिखते हैं बड़ी विशेष बात, कि अगर मंदिर में पुजारी अकेला है, वो पूजा कर रहा है भगवान की अंदर ऑल्टर में, और उस समय कोई अतिथि आ जाए, कोई नहीं हो मंदिर में, तो उसको पूजा छोड़कर, भगवान की पूजा छोड़कर बाहर आकर अतिथि का स्वागत करना चाहिए। ये प्रभुपाद ने लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं भक्ति रसाम, आप लोगों में से कई लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लिया है पूरा, तो पता नहीं ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, प्रभुपाद लिखते हैं। तो इतना जब लिख सकते हैं तो आप सोचिए कितना महत्व दे रहे हैं अतिथि को। पूजा छोड़ो भगवान की, अगर कोई नहीं, हाँ मंदिर में कोई है बात अलग है, पूजा छोड़ो, बाहर आकर पहले अतिथि का स्वागत करो। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण का घर है, तो मंदिर में तो हमें और अच्छी तरह से लोगों का स्वागत करना चाहिए। कोई मंदिर आए तो उसको थोड़ा सा बिठाना, प्रसाद देना, जल इत्यादि देना, प्रसाद मंदिर में नियम होना चाहिए कि हर एक को प्रसाद मिले जो भी मंदिर में आए। प्रभुपाद एक बार एक गुजरात में कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जो पत्रकार हैं उनसे पूछ रहे थे, वो बता रहे थे कि स्वामी जी देखिए आप यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है, पता नहीं किस मंदिर की बात कर रहे, तो वहाँ पर सबके लिए भोजन की व्यवस्था, आप लोगों के ऐसा कुछ है? प्रभुपाद ने कहा आप आइए हमारे जुहू में, इतना बड़ा मंदिर है, हम सबके लिए प्रसाद देते हैं। तो वो जो रिपोर्टर था उसने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, प्रसाद मतलब वो नहीं, वो छोटा द्रोण में शिरा नहीं, हम लोग पूरे प्रसाद। प्रभुपाद हाँ हमारे मंदिरों में सब मिलता, आप आइए हमारे मंदिरों में, आप जाइए, जितने लोग आते हैं हमको, हम सबको पूरा। और फिर प्रभुपाद कहते हैं सब दाल राइस चावल, सब दाल राइस सब्जी चपाती सब मिले। ये इंटरव्यू है प्रभुपाद का, सुन सकते हैं आप लोग, रिकॉर्डेड। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि मंदिर में जो आए उनको प्रसाद मिलना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आए तो हम उसको बोलें प्रसाद नहीं है जाओ। प्रभुपाद का एक पत्र है, प्रभुपाद ने कहा है अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि अभी बन रहा है, अभी रुकिए, खत्म हो गया, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, प्रसाद देना ही चाहिए। क्यों? ये अतिथि के स्वागत की विधि है। और उसमें उस पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि कैसे मंदिर में प्रसाद आएगा, पैसा कैसे आएगा, मतलब आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है। ये विभाग राधा रानी चलाती हैं, आपको विश्वास नहीं है कि वो देंगे, वो देंगे, आप केवल खिलाइए लोगों को, ये प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये विश्वास है, तो विश्वास ही नहीं, ये आदर की पद्धति है। कोई आए तो उनको अच्छे दो शब्द बोलना, प्रसाद देना, तो ये हमें मंदिर में करना चाहिए। तो ये अतिथि के स्वागत की यहाँ पर प्रभुपाद विधि दे रहे हैं। और कैसे हमें कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। यहाँ जो वर्णन हो रहा है कृष्ण के स्वागत का है, जब कृष्ण द्वारका में आए। तो अब हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि हाँ, कोई अतिथि आए उसका कैसे स्वागत होना चाहिए, उसको कैसे हमें घर में बुलाना चाहिए, और अगर वो अतिथि कृष्ण हो तो उनको कैसे हमें अपने घर में बुलाना चाहिए। या दूसरे शब्दों में, हम कृष्ण का कैसे स्वागत कर सकते हैं ताकि कृष्ण हमारे हृदय में आए। ये हमें आज के श्लोक से सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने कहा कि जब तक द्वेष और शत्रुता रहती है हम स्वागत नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन, भीम और कृष्ण गए थे जरासंध के पास लड़ने के लिए, मारने के लिए, लेकिन जरासंध ने उनका स्वागत किया क्योंकि वो अतिथि की तरह आए थे, बिना बताए आए थे, स्वागत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा, ये जो दोनों हैं ये बोलते नहीं है, रात को 12 बजे बोलेंगे। जरासंध ने कहा मैं रात को आऊंगा इनसे बात करने के लिए। रात को 12 बजे, राजा था वो जरासंध उसके ही राज्य में, और जो आकर कह रहे हैं कि हम बात नहीं करते 12 बजे बात करेंगे, वो राजा था, बोल सकता था मत करो मुझे क्या लेना देना। नहीं, वो 12 बजे गए हाथ जोड़कर, जरासंध बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आप दिन में नहीं बोले, अब बोलिए। ये प्रथा थी, स्वागत किया उसने। और इतना ही नहीं, जब युद्ध शुरू हो गया भीम और जरासंध का, उस समय क्या हुआ, अब तो वो जानता था ये मुझे मारने आए हैं। दिन में युद्ध होता था, शाम को बैठकर उनका स्वागत करता था, वो उनसे आराम से आदान प्रदान करता था। जरासंध, आपके लिए कोई कमी तो नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, युद्ध कर रहे दिन में भीम से, भीम मारने वाला है उसको, या ये मारने वाले, ऐसा था कि या ये मारेंगे या वो मारेंगे, लेकिन वो युद्ध की बात है। घर में जब आए, आपको कोई कमी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, फल वगैरह मिल रहे हैं, खाने के लिए है, ये जरासंध शाम को देखा करता था भीम के लिए, अर्जुन के लिए, कृष्ण के लिए। ये पद्धति है, इसीलिए कहा जाता है दुश्मन भी, अगर शत्रु भी आए तो हमें कैसे उसका स्वागत करना चाहिए। जरासंध जैसा असुर ये जानता था उस समय, और अब तो हम बड़े बड़े ब्राह्मण ये नहीं जानते हैं। तो ये सभ्यता है, और जब सभ्यता का पालन होता है तब कृष्ण का आगमन होता है। जहां सभ्यता का पालन नहीं है वहां कृष्ण नहीं आते, बहुत स्पष्ट है। यहां पर कुछ चीजों का वर्णन है, शंख जिससे ध्वनि होती है, वेद, वेदों का उच्चारण ब्राह्मण कर रहे हैं, हाथी, तो ये चीजों से कृष्ण का स्वागत होना चाहिए। तो बाहरी दृष्टि से ये है, जब हम कृष्ण जैसे हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो ऐश्वर्य से करते हैं, जो अच्छी से अच्छी चीज है वो भगवान को देनी चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि घर में कुछ चल नहीं रहा है वो भगवान को दे दिया जाकर, फिर बड़ा नाम हुआ मैंने भगवान को दे दिया। सबसे अच्छी चीज, भगवत गीता में भगवान कई अध्यायों में, 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में ये कहते हैं, जो श्रेष्ठ चीज है वो मैं हूं, है ना, भगवान कहते हैं ना, जिन भी चीजों में श्रेष्ठ है वो मैं हूं, पर्वतों में श्रेष्ठ कौन है वो मैं हूं, नाम बताते हैं, ये कहते हैं भक्तों में श्रेष्ठ दैत्या नाम प्रहलाद अष्टमी, दैत्यों में प्रहलाद श्रेष्ठ है वो मैं हूं। मैं हूं का मतलब वो मेरा प्रतिनिधि है। दूसरे शब्दों में हमें सबसे अच्छी चीजें भगवान को अर्पण करनी चाहिए। अगर भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि बड़ी शुद्धता से, बड़ी सफाई से अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए। सड़े हुए राइस, सड़े हुए सब्जी से नहीं बनाना चाहिए, फेंक देना चाहिए, हम लोग खा सकते, भगवान को नहीं देना चाहिए। तो अच्छी अच्छी चीजें, ये चीजें हमें भगवान को अर्पण करनी चाहिए। तो यहां जो हम लोग देख रहे हैं कि क्यों भगवान को, तो जैसे लाए अभी देखिए, भगवान को लाए तो हाथी पर बिठा कर लाना चाहिए, स्वागत उनका ऐसे होना। हाथी पर क्यों, ये ऐश्वर्य का लक्षण है। हाथी पर कौन बैठते हैं, कोई भिखारी तो नहीं बैठेगा हाथी पर, राजा बैठेंगे, है ना, राजा महाराजा ही हाथी पर। हाथी को तो पाल ही नहीं सकता भिखारी, बैठने की तो दूसरी बात है, अगर किसी को दे भी दिया कि चलो तुम हाथी ले लो कल से हाथी पर बैठना, वो तो एक दिन में मर जाएगा, क्या खिलाएगा हाथी को, भिखारी खुद नहीं है। तो हाथी तो केवल राजा पाल सकते हैं। आप जाइए हम्पी में, तो हम्पी में राजा का महल है, अभी तो उसके खंडहर बचे हैं, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे बड़े बड़े ये बने हुए हैं। तो हम एक बार गए थे तो हमने पूछा वहाँ पे उस महल को देख के कि ये क्या है, तो किसी ने कहा पार्किंग एरिया। मैंने कहा पार्किंग? बोला राजा के हाथी खड़े हुआ करते थे। आजकल हमारी गाड़ियों की पार्किंग होती है ना, तो वहाँ महलों में हाथियों के लिए बने हुए थे और इतने विशाल इतने बड़े बड़े, तो ऐसे एक दो तीन और पूरे हमारे ख्याल से कम 30-40 वो बने, मतलब 30-40 हाथी खड़े हो सकते हैं। तो ये ऐश्वर्य बताइए आज कोई पालन कर सकते हैं 40 हाथियों का? 40 एक हाथी पालन नहीं होता। हमने कई बार आपको बताया, एक बार हमने गलती की थी हाथी बुलाकर बेलगाम में, बड़ा उत्सव कर रहे थे, इच्छा हो गई ऐश्वर्य ऐश्वर्य, हाथी को बुला लिया। वो भी 3 दिन के लिए आया था हाथी, और हम लोगों ने 5,000 लोगों के प्रसाद की व्यवस्था की थी, तो सारा राशन लाके भर दिया था। 4 दिन का के प्रोग्राम था, 4-5 दिन का, 5 दिन का या 7 दिन का, सब लाके भरा था पहले से कि 7 दिन हम लोग 5,000 लोगों को भी खिला सके, इतना राशन था। वो हाथी ने 1 दिन में ख़त्म कर दिया 2 दिन, तो हम लोग को वापस भेजना पड़ा उसको, कहा भाई जाओ। वो क्या था, हमने गलती की, हमने हाथी वाले को बोल दिया जो भी चाहिए वहाँ किचन है ले लेना। लगा हाथी खाएगा 10-20 किलो खा जाएगा, और क्या हो, उससे ज़्यादा क्या खाएगा। और वो भी फ्रीली जाकर उसने सब लिया, और हाथी भी बड़े मज़े में उसका फीस्ट हो गया, और यहाँ हम लोगों को फिर से सामान खरीद कर लाना पड़ा। तो इसीलिए हाथी मतलब ऐश्वर्य। तो यहाँ जो वर्णन है, यहाँ है शंख धूप हाथी या फिर वैदिक मंत्र, इनसे भगवान का स्वागत होता है। तो दूसरे शब्दों में शंख मतलब ध्वनि, शंख से क्या निकलता है, ध्वनि। तो अगर हमें भगवान को अपने हृदय में लाना है तो दिव्य ध्वनि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये ध्वनि होनी चाहिए। और गंध, गंध देना भगवान को, सुगंधित चीजों को अर्पण, हाथी यानी ऐश्वर्य। तो हमें भगवान के स्वागत ऐश्वर्य से करना चाहिए जितना हो सके। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी के जितने, प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए, इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, भगवान की सेवा बड़े ऐश्वर्य से होती है। लोग आश्चर्यचकित होते हैं हमारे बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की एक एक ड्रेस 1.5-2 लाख रुपए की बनती है, एक ड्रेस केवल 1.5-2 लाख। हम लोग तो यहाँ पूरा फेस्टिवल कर लेंगे उसको। ऐश्वर्य से भगवान की सेवा होती है। आप जाइए जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान के, कितने विशाल मंदिर बनाए हैं, और उसपे से अभी रथ यात्रा होती है भगवान की, बताइए इतनी महंगी कार किसी के पास है, 14 फीट ऊंची कार, उस पर बैठकर भगवान चलते हैं। लोगों की कार होती है 4-5 फीट की, वो अगर भगवान के रथ का पहिया चली जाए तो कार सारी पिचक जाएगी। तो ऐश्वर्य से भगवान निकलते, लाखों लोग, कार में मोटर नहीं लगती उनके, लोग लगते हैं और लाखों लोग खींचते हैं, ये ऐश्वर्य है भगवान का। तो भगवान की सेवा ऐश्वर्य से होनी चाहिए, इसलिए हाथी, हाथी ऐश्वर्य का सूचक। और वैदिक स्रोत, तो वेदों के मंत्रों से ही भगवान को बुलाया जा सकता है, अर्थात वेदों के ज्ञान से, केवल मंत्र से नहीं, मंत्र उच्चारण से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आप कितने भी मंत्र उच्चारण कर लीजिए, जो सार है वेदों के सार से भगवान प्रकट होते हैं, इसीलिए आचार्य वेदों के सार देते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सारे मंत्र पता हों वेदों के, हम बड़े बड़े उच्चारण करें, कोई आवश्यकता नहीं, सार पता होना चाहिए। और ये सार प्रकट होता है आचार्यों की शिक्षाओं में। तो इसीलिए अगर हमें श्री कृष्ण को अपने हृदय में स्वागत करना है उनका, तो क्या क्या आवश्यकता है, सबसे पहले इच्छा, तीव्र इच्छा होनी चाहिए कृष्ण को लाने की, जो हमारे अंदर नहीं है। स्पष्ट, हमारे अंदर बड़ी इच्छा है, पहले तो भक्ति नहीं करते तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मैं घर बना लूं, धन बना लूं, बस मेरा परिवार चल जाए, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों के बच्चे बड़े हो जाएं, उनके लिए सब कुछ बना कर जाऊं ताकि कोई मुझे बाद में कुछ कहे नहीं, इत्यादि इत्यादि, ये इच्छाएं हैं व्यक्ति की। फिर भक्ति में आने के बाद क्या इच्छा हो जाती है हमारी, भक्ति में आने के बाद भी अच्छी तरह भक्ति करने पर भी इच्छा क्या होती है, मैं कोई बड़ा मंदिर बना दूं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं जीबीसी बन जाऊं, मैं ये कर दूं, मैं प्रचार कर लूं, मैं इतना कर, कृष्ण को पालू, कृष्ण को प्रसन्न कर लूं, ये इच्छा नहीं होती। भूल जाते हैं, बस मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लिया, बड़ा चीज कर लिया, कुछ बड़ा करके दिखाना, किसको दिखाना? कृष्ण को। एक अगर बड़ा मंदिर बना भी लिया तो कृष्ण को क्या दिखाएंगे हम? इतनी सी चीज है। लेकिन हमारी इच्छा ये रहती, बस मैं ये करूं। ये इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए कि इसका उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता। हमारी हर कार्य में, कार्य करने से पहले हमारी चेतना ये होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे या नहीं। नहीं तो कितना भी बड़ा काम हो उसको त्याग दीजिए। ये कृष्ण भावनामृत है, असली कृष्ण भावनामृत ये है। ये प्रभुपाद चाहते थे कि हर कार्य के पहले हम ये सोचें कि क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर नहीं, छोड़ दीजिए उस कार्य को, कोई आवश्यकता नहीं, वो भक्ति नहीं है। लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे या नहीं? क्योंकि हम तो सोच सकते हैं कि मैं बड़ा मंदिर बनाऊंगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे, मैं ये कर लूंगा तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, मैं प्रचार करूंगा, हजारों लोग आएंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे। गलत भी नहीं है, सही है। तो हमें पता कैसे चले किससे कृष्ण प्रसन्न हो? तो सबसे पहले तो तीव्र इच्छा हृदय में होनी चाहिए, तीव्र इच्छा कृष्ण को पाने की, और कोई इच्छा नहीं। हम बाकी सारे कार्य करें इसके लिए। और दूसरा, अगर इच्छा के साथ हमें मार्ग निर्देशन होना चाहिए, हमें कोई बताने वाला होना चाहिए कि ये मार्ग ऐसा करो, तब आप, केवल इच्छा पूर्ण नहीं है, इच्छा से कुछ नहीं होता, इच्छा से केवल थोड़ा आगे बढ़ते, लेकिन मार्ग सही चाहिए। इसीलिए देखिए, कई लोग हैं जो, इनको जरा 5-10 मिनट के लिए रुकने को बोलना, 10 मिनट ठोका ठोकी बंद करें। कई लोग हैं जिनकी बड़ी इच्छा है भगवान को पाने की, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं है, इसीलिए इतने गलत जगहों पर हैं। वो अपने मन से भक्ति करते हैं, भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान में विलीन हो जाना है, यही अंतिम अवस्था है, अज्ञान है। तो क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला, इच्छा थी भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन मार्गदर्शन सही नहीं था, इसलिए गलत जगह पर। तो कृष्ण को प्राप्ति नहीं होगी, जो कृष्ण के स्वरूप को ही नहीं मान रहा उसको कृष्ण की क्या प्राप्ति होगी? तो इसीलिए दूसरी चीज, हमें सही मार्गदर्शन चाहिए। इच्छा हो गई, अब सही मार्गदर्शन लीजिए। और सही मार्गदर्शन लेने के बाद क्या है, फिर क्या करना है? नियमित जीवन। मार्गदर्शन तो गुरु दे देंगे, प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं, हर भक्त को सुबह मंगल आरती में आना चाहिए, सुबह उठना ही चाहिए, सुबह सोना नहीं चाहिए। ये बहुत स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद ने, उपदेशामृत में लिखते हैं, सुबह मंगल आरती आना, कार्यक्रम करना, ये निश्चित, हर एक को सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, मंगल आरती आना चाहिए, ये लिखा है। ये वैसे डीपी वर्शिप का एक हिस्सा है, डीपी वर्शिप विग्रह सेवा का एक हिस्सा है अतिथि सेवा, ये कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, डीटी वर्शिप में ही आता है। खैर, तो हमें सही नियमित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जो मार्ग आचार्य ने दिया, जो मार्गदर्शन दिखलाया, उस पर चलना तो चाहिए। प्रभुपाद ने मार्ग दे दिया, जब हम चलेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? और चलने का अर्थ क्या है? थोड़ी सी तपस्या, अर्थात जो चीज हम करते आ रहे थे, जो चीजें हमें अच्छी लग रही थी, उनको त्यागना, और फिर जो प्रभुपाद बताएं, जो आचार्य बताएं, उस मार्ग पर चलना, भले वो हमें अच्छा नहीं लगे। कभी कभी ऐसा होता है, हमें कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं भक्ति में, हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आचार्यों की इच्छा है, हमारे अधिकारियों की इच्छा है, हमारे गुरु की इच्छा है, आंख बंद करके करना चाहिए, प्रगति उसी में। तो फिर ये तीसरी चीज कि हमें नियमित जीवन, अर्थात उस मार्ग पर चलना। और जब हम ऐसे करते हैं तब हमारे हृदय में दृढ़ता आती है। दृढ़ता चाहिए, क्योंकि जब आप भक्ति में चलने लगेंगे, कई लोग हैं, कई चीजें हैं जो आपको हिलाएंगे, आपको पथ भ्रष्ट होने के लिए प्रेरणा देंगे, कई चीजें, आपका परिवार हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके स्वजन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर वाले या असुर या अभक्त ही केवल आपको परेशान करेंगे, नहीं, आपका परिवार हो सकता है जिससे आपको बड़ा प्रेम है, आप सोचते हैं ये सब सही है, हो सकता है वो भक्ति से दूर ले जाए आपको। आपके स्वजन हो सकते हैं, आप अच्छी तरह भक्ति करना चाहते हैं, आपके स्वजन नहीं चाहते और उनके कारण आप भक्ति को त्यागते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए दृढ़ता चाहिए। भक्ति आप कर रहे, मार्ग पे चलना आपने शुरू किया, पहले इच्छा थी, याद रखिए, पहले इच्छा, फिर उसके बाद सही प्रमाणिक मार्गदर्शन, अब हम उस पर चलने लगे तो फिर कई लोग हैं हमें जो खींचने वाले हैं, बहुत से बाधाएं हैं, आपके परिवार वाले आपको खींच लेंगे, समाज खींच लेगा, इच्छाएं खींच लेंगी, बहुत सारी चीजें आपके तथा कथित कर्तव्य आपको खींच लेंगे, आप सोचेंगे मेरा कर्तव्य है, कैसे मैं इसको त्याग सकता हूं। नहीं, एक ही कर्तव्य है व्यक्ति का, कृष्ण भक्ति, बाकी सारे कर्तव्य उस कर्तव्य को सहयोग करने के लिए। तो फिर दृढ़ता चाहिए। तो जब हम बड़ी कड़ाई से मार्ग पर चलेंगे, जो आचार्यों ने दिया बिना उसमें संशय किए, भगवान कहते संशय आत्मा विनश्यति, बिना संशय किए जब उस मार्ग पर चलेंगे तो दृढ़ता आएगी, फिर हम दृढ़ हो जाएंगे। और जब ये दृढ़ता आएगी तब हम समर्पण के लिए तैयार होंगे, और तब हमारा समर्पण होगा और तब हम कृष्ण को अपने हृदय में स्वागत कर सकेंगे। तो इस श्लोक में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कृष्ण का स्वागत हुआ है, तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में कृष्ण का स्वागत करना चाहिए, तीव्र इच्छा के द्वारा, एक प्रामाणिक गुरु के मार्ग निर्देशन के द्वारा, उस पथ पर बड़ी कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए दृढ़ता को उत्पन्न करने के द्वारा, और अंत में भगवान को समर्पण के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।